आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पैरागुए के सदर सांतियागो पेना पलासियोस से बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म भारत मंडपम में बैन-अल-अक़वामी फजाई ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की सालाना जनरल मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। भारत की GST वसूली मई के महीने में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रही। ये सिलसिला लगातार 2 महीने से जारी है। रूस ने तस्दीक की है कि यूक्रेन ने उसके 5 फजाई ठिकानों पर ड्रोन हमले किए हैं। आलमी चैंपियन डी गुकेश ने स्टेवेंगर सिटी में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के 6ठे राउंड में मैग्नस कार्लसन को शिकस्त दी। और IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स के फाइनल में पहुंच गई है, उसने दूसरे क्वालिफायर मैच में मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पैरागुए के सदर सांतियागो पेना पेलासियोस से बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि दोनों रहनुमा दोतरफा ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लेंगे। पैरागुए के सदर आज से भारत के 3 रोजा सरकारी दौरे पर हैं। उनके हमरा एक आला सतह का वफ़द भी है, जिसमें वुज़रा, सीनियर अफसरान और सरकर्दा ताजिर भी शामिल हैं। सदर पेना का भारत का ये पहला सरकारी दौरा है और सदर की हैसियत से किसी मुल्क का ये उनका अब तक का दूसरा दौरा है। एक रिपोर्ट।
सदर पेना सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। सदर पेना बुध को अपने वतन वापस जाएंगे और उससे पहले वो मुंबई का दौरा करेंगे, जहां वो रियासत के सियासी रहनुमाओं, सरकर्दा ताजिरों और सनतकारों, नीज तकनीक के माहरीन से मुलाकात करेंगे, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान पिछली दहाइयों से जारी सरगर्म और दोस्ताना ताल्लुकात को फरोग हासिल होगा। दोनों मुल्कों ने तजारत, ज़राअत, सेहत, दवासाजी और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन शुरू किया है। पैरागुए लातीनी अमरीकी खित्ते में भारत का अहम तजारती शराकतदार है। पैरागुए की कंपनियां भारत में भी हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ बैन-अल-अक़वामी मसाइल पर मुश्तरका नज़रियात हैं, जिनमें अक़वामे मुत्तहिदा इस्लाहात, आबोहवा में तब्दीली, काबिले तजदीद तवानाई और दहशतगर्दी से निमटना शामिल है। नई दिल्ली से अक्षित वेदयान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA की 81वीं सालाना जनरल मीटिंग में शिरकत करेंगे। वो इस मौके पर इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
IATA की ये मीटिंग गुज़िश्ता कल शुरू हुई थी और कल तक जारी रहेगी। फिजाई ट्रांसपोर्ट की इस आलमी सरबरा कॉन्फ्रेंस में हवाबाजी की सनत को दरपेश चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिसमें एयरलाइन सनत की माशियात, फिजाई रबते, तवानाई का किफायती इस्तेमाल, तैयारों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की मुस्तकिल पैदावार, कार्बन को खत्म करने के लिए रकूम की फराहमी और इख्तराआत वगैरह शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने एक बयान में कहा कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान दुनिया भर के रहनुमा हवाबाजी के मंजरनामे में भारत की काबिले सताइश यकसर तब्दीली और मुल्क की समाजी व इक्तसादी तरक्की में उसके तआवुन से वाकिफ होंगे। IATA की पिछली सालाना जनरल मीटिंग 42 साल पहले साल 1983 में मुनाक़िद हुई थी। नई दिल्ली से प्रिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए ज़मीर रज़वी।
भारत की मजमूई अशिया और खिदमात टैक्स GST की वसूली मई में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। ये सिलसिला लगातार 2 महीने से जारी है। खजाने की मरकजी वजारत की तरफ से जारी आदाद शुमार के मुताबिक मई में GST वसूली 2.01 लाख करोड़ रुपए रही, जो मई 2024 की 1.72 लाख करोड़ रुपए की वसूली के मुकाबले 16.4% ज्यादा है। अप्रैल 2025 में भारत की GST वसूली में 12.6% इजाफा हुआ और ये बढ़कर अभी तक की सबसे ऊंची सतह 2.37 लाख करोड़ रुपए हो गई। भारतीय मार्केट्स में गैर मुल्की सरमायाकारों ने लगातार दूसरे महीने सरमायाकारी में इजाफा करते हुए मई के महीने में भारत की असासा मार्केट में तकरीबन 40,000 करोड़ रुपये लगाए हैं। आदाद व शुमार के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों FPIs ने भारत की शेयर मार्केट्स में 19,860 करोड़ रुपए और कर्जा मार्केट में 19,615 करोड़ रुपए लगाए हैं। इस तरह भारत की असासा मार्केट्स में इस माह में कुल सरमायाकारी 38,475 करोड़ रुपए हो गई। ज़िराअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ज़िराअत मुल्क की मईशत की सबसे बड़ी ताकत है। नई दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लाजमी इंसानियत से मुतालिक लेक्चर्स के 60 साल पूरे होने के मौके पर कौमी यादगार सेमिनार से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने देही इलाकों में गुर्बत में खातिरखा कमी और मुल्क में लोगों के मयार जिंदगी में मुस्बत तब्दीली का खास तौर पर जिक्र किया।
युद्ध का जब वातावरण था सीमा पे, मैंने अपने खाद भंडारों की समीक्षा की तो खेत में किसान और सीमा पे जवान डटा हुआ था और हमने देशवासियों से कहा था चिंता मत करो भंडार भरपूर है। और आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो खेती है।
वजीर मौसूफ ने कहा कि लखपति दीदी स्कीम खवातीन को बाइख्तियार बनाने की एक बड़ी मुहिम साबित हुई है। कृषि विज्ञान केंद्र KVK कारगिल वन ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत लगातार तीसरे दिन भी अपनी रसाई जारी रखी। ये पहल कौमी मिशन विकसित भारत 2047 का हिस्सा है, जिसका मकसद पायदार जरई तरीकों को फरोग देना और किसानों की बहबूद को यकीनी बनाना है। ये मुहिम तीसरे दिन कारगिल ब्लॉक पर मरकूज रही, जिसमें खित्ते के किसान पुरजोश तरीके से शामिल हुए। इस दौरान महकमा ज़िराअत, बागबानी, मवेशी परवरी, माही परवरी और जंगलात के अफसरान ने सरगर्म शिरकत की, जिससे किसानों को मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों और तकनीकी मदद से मुतालिक मालूमात हासिल हुई। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। हम ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं, लिहाजा कौम भारतीय सिपाहियों की बहादुरी को सलाम पेश करती है। मुसल्ला फौजों को खिराज अकीदत पेश करते हुए आकाशवाणी का खबरों का शोभा खुसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज हम याद कर रहे हैं परमवीर चक्र के हामिल कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह को, जिन्होंने 1947-48 की भारत पाकिस्तान जंग के दौरान अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी।
कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह राजस्थान में 1918 में पैदा हुए थे और 1936 में 6 राजपूताना राइफल्स में शामिल हुए थे। जुलाई 1948 में जम्मू कश्मीर के तिथवाल सेक्टर में एक शदीद कार्रवाई के दौरान पीरू सिंह की कंपनी को दुश्मन के एक इलाके का मुहासरा करने का काम सौंपा गया। दुश्मन की तरफ से शदीद फायरिंग के दौरान एक तंग रास्ते से गुजरते हुए इन फौजियों को जबरदस्त जानी नुकसान पहुंचा, लेकिन कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह ने अपनी ये पेशरफ्त अकेले ही जारी रखी। उन्होंने ग्रेनेड की वजह से जख्मी होने के बावजूद अपनी बंदूक की संगीन से दुश्मन को मजा चखा दिया। उनके जिस्म से खून बह रहा था और आंखों से बहुत कम दिखाई दे रहा था, उन्होंने फिर भी अपनी तरफ से हमला जारी रखा। जब उनके पास बंदूक की गोलियां खत्म हो गईं, तो उन्होंने ग्रेनेड फेंके और वो अपनी बंदूक से दुश्मन सिपाहियों के सीनों में एक के बाद एक संगीन उतारते चले गए। जैसे ही उन्होंने हमला करने के लिए एक और चौकी की तरफ अपना रुख किया, एक गोली उनके सर में आ लगी, यहां तक कि उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में दुश्मन फौज पर एक गोला दाग दिया। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह की इस मुनफरिद अंदाज की कार्रवाई से एक मिसाल कायम हुई, लिहाजा उन्हें बाद अज मर्ग परमवीर चक्र से नवाजा गया। सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद,
चंडीगढ़। ऑपरेशन सिंदूर के जाबाजों की याद और उनके तई इजहार तशक्कुर और पहलगाम के वेश्याना दहशतगर्दाना हमले में जान गंवाने वाले बेकसूर अफराद के साथ मुत्तहिद रहा। गुज़श्ता शाम चंडीगढ़ में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका उन्वान था सिंदूर का संदेश, न भूलेंगे न माफ करेंगे। इस तकरीब में कौमी यकजहती के इजहार के तौर पर अवाम, शहीदों के अफराद खानदान और दीगर लोग यकजा हुए। तकरीब में पंजाब के गवर्नर और मरकज के जेर इंतजाम इलाके चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर गुलाब चंद कटारिया ने भी शिरकत की और वहां मौजूद लोगों के दिलों में हुब्बुल वतनी का जज्बा जगाया। इस दौरान जब स्टेज के पीछे कौमी परचम लहराया गया, तो सेक्टर 17 प्लाजा में मौजूद लोगों ने अश्कबार आंखों के साथ खामोशी इख्तियार करते हुए शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। हुकूमत 5 साल के वक्फे के बाद नाथुला के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। 15 जून 2025 को अकीदतमंदों का पहला बैच गैंगटॉक पहुंचेगा। इस सफर का आगाज भगवान शिव के मुकद्दस क्यामगाह गैंगटॉक से शुरू होगा और अकीदतमंद नाथुला से होते हुए कैलाश और मानसरोवर तक जाएंगे। 48 अकीदतमंदों पर मुश्तमिल 10 बैच 20 से 21 दिन की यात्रा करेगा। उनके साथ राबता अफसरान और बावर्ची और मुआविन अमला भी होगा। रवानगी से पहले अकीदतमंद 11 जून को मेडिकल चेकअप और परमिट क्लियरेंस के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। तफसील हमारे नमानिकार से।
عقیدت مندوں کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے سکم کی حکومت نے مختلف مراکز، رہائش گاہوں اور طبی خدمات سمیت مناسب بندوبست کیے ہیں۔ گینگٹوک میں سفر کے آغاز سے پہلے کے پروگراموں میں یوگ سیشن، صبح کی ورزش اور مراقبے کا عمل شامل ہے۔ سیاحت کے محکمے کی جانب سے عقیدت مندوں کو راستے اور سفر کے پروگرام کے تعلق سے واقف کرایا جائے گا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری سی ایس راؤ نے سکم کے منفرد جغرافیہ کو سفر کے لیے مثالی قرار دیا۔ انہوں نے عقیدت مندوں کو مشورہ دیا کہ وہ ضروری اونی کپڑے اور دوائیاں ساتھ رکھیں۔ اس سفر کو کامیاب اور محفوظ بنانے کے لیے سکم حکومت پوری طرح سے پرعزم ہے۔ میناک چٹرجی کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے ضمیر رضوی۔
آج تلنگانہ ریاست کا یوم تاسیس منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر مختلف پروگراموں اور سرکاری دفاتر میں قومی پرچم پھہرایا جائے گا۔ 2014 میں آج ہی کے دن آندھرا پردیش تنظیم نو ایکٹ کے تحت تلنگانہ کو ملک کی 29ویں ریاست کے طور پر تشکیل دیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ اے ریونت ریڈی آج سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ میں منعقد ہونے والے ایک سرکاری پروگرام میں قومی پرچم پھہرائیں گے۔ یوکرین نے روس کے خلاف کل بڑے پیمانے پر ڈرون کارروائی کی ہے۔ اس نے مورمنسک، ارکوتس، ایوانوو، ریازان اور آمور خطوں میں 5 روسی فضائی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ روس کی وزارت دفاع نے ان حملوں کی یہ کہتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ کئی طیاروں میں آگ لگ گئی، اگرچہ کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ روس نے ان حملوں کو دہشت گردانہ حملے قرار دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایوانوو، ریازان اور آمور پر ڈرون حملوں کو پسپا کر دیا۔ البتہ یوکرین نے کہا ہے کہ اس کارروائی میں، جس کی تیاری اس کی سیکیورٹی سروس ایس بی یو نے 11 مہینے تک کی ہے، تقریباً 40 طیارے تباہ کیے ہیں، جن میں نیوکلیائی صلاحیت والے TU-95 اور TU-22 بمبار طیارے بھی شامل ہیں۔ ناروے شطرنج 2025 میں ناروے کے شہر سٹاونگر میں بھارت کے 9 عمر کھلاڑی ڈی گوکیش نے پہلی مرتبہ عالمی نمبر 1 کھلاڑی میگنس کارلسن کو راؤنڈ 6 میں ہرا دیا۔ سفید موروں سے کھیلتے ہوئے گوکیش نے کارلسن کی غلطی کا فائدہ اٹھایا اور سخت مقابلے میں غلبہ حاصل کرتے ہوئے بازی پلٹ دی۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل احمد آباد میں کھیلے گئے دوسرے کوالیفائر میں پنجاب کنگز نے ممبئی انڈینز کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس سنسنی خیز مقابلے میں 204 رن کے لیے کھیلتے ہوئے کپتان شریس ائیر نے 87 رن اور نہال وڈیرا نے 48 رن بنائے اور ایک اوور باقی رہتے ہوئے نشانہ حاصل کر لیا۔ کل ہونے والے فائنل میں اب پنجاب کنگز کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا۔ اس دوران پنجاب کنگز فائنل جیت کا اپنا پہلا آئی پی ایل خطاب جیتنے کی بھرپور کوشش کرے گی۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ ہندی اور انگریزی میں براہ راست نشر ہونے والے اپنے فون ان پروگرام پبلک اسپیک میں آج رات 9:30 بجے ڈیجیٹل تجارت میں صارفین کے غلط طور طریقوں سے تحفظ پر ایک تفصیلی مذاکرہ نشر کرے گا۔ یہ مذاکرہ صارفین سے متعلق قانون، حقوق اور حفاظت کے میدان میں سماجی کارکن اور ماہر پشپا گریما جی کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کلیم احمد۔
شکریہ اسلم۔ دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے وزیراعظم نریندر مودی سے ایشیائی ترقیاتی بینک ADB کے سربراہ ماساتو کاندا کی ملاقات کی ایک خبر کو نمایاں کرتے ہوئے لکھا ہے، بھارت میں شہری بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی کے لیے ADB کا 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا منصوبہ ہے۔ اخبار نے مغربی بنگال میں BJP کارکنوں سے وزیر داخلہ امت شاہ کے کیے گئے خطاب کو اہمیت کے ساتھ شائع کرتے ہوئے لکھا ہے، مغربی بنگال میں انتخابات ملک کی سلامتی کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے شمال مشرقی ریاستوں میں شدید بارش اور سیلاب کی تباہی سے متعلق خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ اخبار کی سرخی ہے، سکم میں شدید بارش، تودوں کا قہر اور 1350 سیاح لاچین اور لاچنگ میں پھنسے۔
اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں پیراگوئے کے صدر سانتیاگو پینا پلاسیا سے بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم بھارت منڈپم میں بین الاقوامی فضائی ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کی سالانہ جنرل میٹنگ میں بھی شرکت کریں گے۔ بھارت کی GST وصولی مئی کے مہینے میں 2,00,000 کروڑ روپے سے زیادہ رہی، یہ سلسلہ لگاتار 2 مہینے سے جاری ہے۔ روس نے تصدیق کی ہے کہ یوکرین نے اس کے 5 فضائی ٹھکانوں پر ڈرون حملے کیے ہیں۔ عالمی چیمپئن ڈی گوکیش نے سٹیونگر سٹی میں ناروے شطرنج ٹورنامنٹ کے 6ٹے راؤنڈ میں میگنس کارلسن کو شکست دی۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں پنجاب کنگز فائنل میں پہنچ گئی ہے، اس نے دوسرے کوالیفائنل میچ میں ممبئی انڈینز کو 5 وکٹ سے ہرایا۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔